चलिए थोड़ा सा सूरत नमल को देखते हैं। बड़ी प्यारी सूरत है और नमल चुंटी को कहते हैं। अल्लाह ने एक चुंटी का भी तذکرہ قرآن پاک میں کر دیا کیونکہ واقعی یہ بھی اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ 93 آیات ہیں، مکی سورت ہے، 8 اس کے مضمون ہیں۔ پہلا ٹاپک آیت 1-6 ہے، تمہید ہے یعنی انٹروڈکشن ہے۔ آیت نمبر 7-14 تک حضرت موسیٰ کا قصہ اور قوم کا انجام ہے کہ جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ آیت 15-44 حضرت سلیمان کا قصہ اور ان کی انجوجل خوبیوں کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر بہت کم آتا ہے قرآن پاک میں، اس لیے یونیک ہے یہ چیز۔ پھر آیت 45-53 میں حضرت صالح، حضرت سمود، قصہ صالح، سمود اور ظلم کا انجام ہے۔ آیت 54-58 میں قصہ لوط، قوم لوط کا انجام۔ پھر ایک ہی آیت 59 انبیاء کرام کی خدمات توحید، یعنی انہوں نے کیا کیا خدمت کی اللہ کا پیغام دینے کے رستے میں۔ پھر آیت 60-69 میں توحید کے دلائل ہیں کہ جس طرح اللہ الہ ہے، حاکم بھی وہی ہے اور اس کی حاکمیت کو مانو۔ اور پھر آیت نمبر 70-93 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں اور قیامت کے کچھ مناظر ہیں۔ پوری سورت کا بنیادی تھیم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لے آؤ اور اللہ کو الہ بھی مانو، حاکم بھی مانو، اور دنیا میں لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلاؤ تو سب سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑو۔ مکی دور کے تیسرے دور میں تقریباً 10 نبوی میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی دعوت پہ شک بھی موجود تھا، آپ کو ساحر بھی کہہ رہے تھے، اور اسی طرح سے اس سورت میں ملکہ سبا کا قصہ سنا کر قریش کے سرداروں کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ وہ ایک عورت تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی، لیکن جب ایک نبی کا پیغام آیا تو وہ اس کو مان گئی، اور تم ہو کہ اتنے پیارے نبی کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سورت میں سے بہترین حصہ لینے کی توفیق دے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدم و بشرا للمؤمنین۔ توسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفات ڈال دے۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ذرا غور کر لیں، 3 سیکنڈ، مضمون بڑا کلیئر ہے۔ دنیا میں گھومنے کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ بھٹک رہے ہیں کیونکہ ایمان کی جو کمی ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ ہم سب بھی اللہ کا شکر کریں۔ آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس کو انجوائے کریں کہ اگر قرآن نہ ہوتا، دنیا میں قرآن نہ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بچہ نہ ہوتا۔ لوگ سوچتے ہیں نا کہ قرآن کیا ہے، کتاب ہے، لیکن آپ کو شاید ابھی اس کی وہ چیز نہ سمجھ آئے اگر آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ قرآن سب سے خوبصورت چیز بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کسی کا نیو بورن بیبی ہوتا ہے نا، تو ہر وقت دل دماغ اسی کے اندر کھویا رہتا ہے، تو جب قرآن کی سمجھ آتی ہے نا، تو اللہ ہی اپنے بچے سے بھی پیارا لگتا ہے۔ دل دماغ، آنکھیں، کان، سوچ، سب وقت اس میں، کیونکہ علیم ہستی کی طرف سے، تو اس سے پیار کرنا بھی فرسٹ اسٹیپ ہی بن جائے گا۔ ایک مائل اسٹون تو طے ہو ہی گیا نا ہدایت کی طرف۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کتاب سے پیار کر، محبت دے دے۔ اللہ اس ان تجل القرآن ربی یا قلبی و نور و صدری، اور جب یہ قرآن زندگی بن جاتا ہے تو پھر زندگی سے پیار ہو جاتا ہے، پھر زندگی کارآمد بنتی ہے جب واقعی یہ قرآن آپ کی میری زندگی میں آتا ہے۔ قصہ موسیٰ کا یہاں ترتیب سے آ رہا ہے، بڑا ڈیٹیل سے اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ آگے بھی آئے گا، لیکن یہاں اشارتاً کم از کم کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اس قال موسیٰ لأہلہ، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ یہ کب ہوا؟ جب مدین سے مصر واپس آ رہے تھے، بیوی ساتھ تھی، پریگننٹ تھی، اور موسیٰ ایک اچھے ذمہ دار شوہر کی طرح بیوی کے لیے آگ لینے کا انتظام کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ کہا، مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں بھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ تو مردوں کا اپنے گھر والوں کی ٹیک کیئر کرنا، یہ اچھی بات ہے اور ایسی بات پہ بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لقمہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ خیر، موسیٰ تو گئے تھے آگ لینے، کیا مل رہا ہے؟ پیغمبری مل رہی ہے۔ جیسے آپ آئے दौरे कुरान के लिए, और शायद आपको यहाँ से अपने रब का प्यार मिल रहा होगा, कुर्ब मिल जाएगा। आप आए 1 महीने के लिए, फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए इससे जुड़ जाएंगे। ये अल्लाह की नेमत होती है, तलब ज़्यादा होती है ना, थोड़े से ज़्यादा देता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ। कभी कभी आप यहाँ से घर जाते हुए कहते होंगे अपनी साथाली को, जरा ये मैं खीवी पे रुक जाऊँ, बस एक चीज़ लेनी है। मैं तो जिनके साथ जाऊँ मैं अक्सर यही कुछ देख रही होती हूँ। अच्छा, वो क्या कहती है, बस एक चीज़ लेनी है। अंदर से वापस आती हैं तो हाथ में कितने थैले होते हैं। ये कुरान आपके मेरे साथ कर, दुआ करें ऐसा हो जाए। हम सिर्फ आज के लिए आए, चलो वीकेंड है चलती हूँ, चले आज संडे है चलते हैं, चले आज सिर्फ हो सकता है सूरत नमल से ही प्यार हो, नमल सुनने आ गए। आप आए 1 दिन के लिए, अल्लाह ने पकड़ लिया, मैं जाने ही नहीं दूंगा। या ऐसे होता नहीं जैसे आप अपनी खाला मामी पुप्पी चचा भाव जिसके घर जाते हैं, बस 1 दिन जाऊँगी, 1 दिन के लिए जा रही हूँ, कहते हम जाने ही नहीं देंगे, पूरा हफ्ता वो आपका बैग छुपा देते हैं, कहते नहीं जाने देंगे। तो अल्लाह करे अल्लाह हमें भी रोक ही ले। हैं तैयार? कितने लोग डर रहे हैं इस बात से, कितने लोग चाहते हैं कि अल्लाह उनको रोक ही ले। अच्छा, कुछ लोग अंदर बैग में 2-3 जोड़े लेकर आते हैं, लेकिन कहते हैं बस कल चले जाना है। भाई ये 2-3 क्यों रखें? नहीं, अगर उन्होंने रोक लिया तो क्या करेंगे? तो दुआ करें अल्लाह हमें रोक ले, अल्लाह ताला मुझे तो रोक ही ले। हर एक अपने लिए ये कहे। तो मूसा को अल्लाह ने कितना प्यारा दिया, अल्लाह हमें भी इसी तरह दे रहा है, हमें भी लेने वाला बना दे। फलम्मा जाहनू दिया बूरी कमन फिन्नार, फिर जब वहाँ पहुँचे तो निदा आई, मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है। क्या आपको यहाँ के माहौल की बरकत महसूस होती है? ये कुरान की बरकत है। हदीस में खाली जगहों पे फरिश्ते होते हैं, आपके ऊपर फरिश्तों ने इसको घेरा होगा, इसको महसूस किया करें। तो याद रखिए कि इस बरकत को जितना खूबसूरत करेंगे, इस माहौल को अच्छा रखें, साफ़ सुथरा हो, खुशबू आए, घर से आते हुए आप भी शावर लेकर आया करें, साफ़ कपड़े पहन कर आया करें, एक अबाया 1 दिन से ज़्यादा ना पहनें, दोबारा बदलें, आप खुद फील करेंगे कि आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अगर इधर नींद आती है तो दैट मीन आप या तो बहुत सुबह शावर लिया था अब नहीं लिया हुआ, या कोई और वजह है। तो आने से पहले बिल्कुल फ्रेश होकर आया करें कि आपको ऐसे लगे जैसे हम शादी में जा रहे हैं, धुले धुलाए साफ़ सुथरे, आपको नींद भी नहीं आएगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो वाकई वही को अखज़ करने में हमारी मददगार होती हैं। खैर, फलम मजा हनूद या बूरी का मन फिन नार, वहाँ जो पहुँचे तो निदा आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है। पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। अब मूसा के दिल की क्या हालत होगी जब ये जुमला अल्लाह का सुना होगा, या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, ए मूसा ये मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त और दाना। क्या आपको ये कुरान पढ़ते हुए सच बताएं ये जुमला नहीं मिल रहा? हर जुमले पे मुझे तो यही लगता है अल्लाह कह रहा है ये मैं हूँ जिसने ये हुक्म दिया, ये मैं हूँ जिसने इतनी प्यारी कायनात बनाई। सिर्फ आपकी मेरी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाए ना तो हम इस कुरान को वाकई अल्लाह का कलाम समझने लगे। करो कि अवल की असाक फलम्मा राहत अख्तसु का नहजान, और फेंक दो जरा अपनी लाठी को, जूं ही के मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर ना देखा। क्या पता चला कि शुरू शुरू में जब कोई नई जिम्मेदारी मिलती है ना तो बंदा भागने लगता, कहता मुझे नहीं कुछ करना आता। इसको नोट करे, हाय मुझे नहीं आता, कुरान का कोर्स करने लगे, नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरी तजवीज़ ठीक नहीं, मैं बैठ नहीं सकती, मैं आ नहीं सकती, किसी को कहा जाए अच्छा आप इधर पढ़ाने की ड्यूटी ले लें, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे डर लगता है, माइक से डर लगता है। तो यह अमल नोट कीजिए कि ज़रूरी नहीं कि शुरू में इंसान को जो ज़िम्मेदारी मिले वो उसको आती भी हो, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मूसा डरो नहीं, ए मूसा डरो नहीं, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, यानी कम ऑन आई विल टीच यू, आई विल गिव यू ट्रेनिंग। दुनिया वाले आपकी स्किल्स की बेस पे आपको इलेक्ट करते हैं, अल्लाह आपको आपकी स्किल्स पे नहीं इलेक्ट करता। सारी ज़िंदगी सीखते ही रह जाते हैं फिर मर जाते हैं, काम करना ही नहीं आता हमें सारी ज़िंदगी, अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो मर जाते हैं। अल्लाह सिखाता है, काम करने के दौरान सिखाता है, जैसे अल्लाह ताला में से बहुत सारों को अभी तक सिखा रहा है, और ये सीखते सीखते दुनिया से हम चले जाएंगे, कह देंगे अल्लाह ताला जितना सीखा जो किया करके आ गए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो कोई ये ना सोचे कि मुझे ये काम करने नहीं आते, आ जाएंगे। ड्राइविंग जो औरत कर सकती है उसको और क्या मुश्किल है, आप सोच सकते हैं कितने मुश्किल काम आज औरतें कर रही हैं। तो क्या कुरान नहीं सीख सकते, कुरान नहीं सिखा सकते, कुरान की खिदमत नहीं कर सकते, कंप्यूटर नहीं चला सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, जिसने कोई कसूर किया फिर वो नहीं सीख सकता, यहाँ ये इशारा भी मिल गया। फिर अगर बुराई के बाद इसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया तो मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ, और ज़रा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डाल कर देखिए, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियाँ 9 निशानियों में से हैं फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए, वो बड़े बदकिरदार लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानी इन लोगों के सामने आई तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है, उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल इनके कायल हो चुके थे। कुछ लोग कुरान के पैगाम से कायल हो चुके होते हैं, दिल मान चुके होते हैं, मुतमईन होते हैं अंदर से, लेकिन क्यों भाग जाते हैं, नई चीज़ कबूल नहीं करते, तब्दीली नहीं लाना चाहते माशरों में, सोसाइटी में, ख़ानदान में। बस चल पड़े हैं ना, तो अब क्या करें, नहीं चलो फिर छोड़ो। तो कब देख लो कि इन मुफसिदों का अंजाम क्या हुआ। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमाना इल्मा। अब यहाँ से आपको वो नबी मिलेंगे, नोट कर लीजिए, कि जिनको दीन तो मिला ही था, सब नबियों की तरह दुनिया भी मिली थी। इससे पिछले जितने भी अम्बिया के किस्से आए हैं ना, मोस्टली वो सब वो थे जो बेचारे दुनिया की तरफ से, कह लीजिए मौलवी थे, हम जैसे थे बेचारे मौलवी टाइप। लेकिन अब ये वो नबी हैं कि जिनको बादशाहत मिली, अनयूजल मौजे मिले, जैसे आज के दौर में आप कहें कि साइंस की तरक्की उनके हाथ में थी, बड़े बड़े काम वो ऐसे मिनटों में करते हुए दिखते हैं, सेटेलाइट्स उनके पास हैं और वो हुबल लेकर आए खलाओं में जा रहे हैं और वो सितारों पे कमंदे डालते दिख रहे हैं। तो ये भी एक दौर आता है कब, जब लोग वाकई अल्लाह के दीन को संजीदगी से लेंगे ना, तो ये दौर आएगा। और ये नबी सल्लम के बाद भी दौर आया था, सहाबा की ज़िंदगी के बाद 1000 साल तक मुसलमानों का यही दौर था। आप हिस्ट्री को खोल के देखें, जितनी पीछे माजी में इन्वेंशंस हुई थी ना, वो सारी की सारी मुसलमानों के हाथों हुई। ज़रा इस सिनेरियो में सुनिए गए नायतों को। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमाना इल्मा। दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है इस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। 3 सेकंड ज़रा आप भी इस वक्त शऊर से ये सोचिए, किस दौलत का, किस नेमत का वो शुक्र अदा कर रहे हैं। इल्म, इल्म की दौलत खूबसूरत है। देखिए जब इल्म होता है ना, तो दुनिया की तरक्की सुलेमान और दाऊद बना देती है लोगों को, लोगों की फलाह के, लोगों की ज़रूरत के काम करते हुए। जब इल्मुल वही के बग़ैर दुनिया की इन्वेंशंस और दुनिया की चीज़ें मिलने लगती है ना, तो वो हथियार बनते हैं, वेपन्स बनते हैं, इंसानियत को तबाह करने वाले केमिकल्स बनते हैं। तो यहाँ इस बात का शुक्र है कि अल्लाह तूने हमें दुनिया भी दी, तो हम दीन की रहनुमाई में उसको तेरे बंदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वारिस सुलेमान दाऊदा, और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, बाप का बेटा। और इसने कहा, लोगों में परिंदों की बोलियां सिखाई गईं और हमें हर तरह की चीजें दे दी गईं, बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए जाते थे और वो पूरे के पूरे जब्त में रखे जाते थे। यहाँ जरा हजरत सुलेमान के किरदार पे तो गौर कीजिए। आज के दौर में आप कह सकते हैं यूनिक क्वालिटीज, आज कोई 10 लोगों में एक बंदा PhD होल्डर हो ना, लोग कहेंगे ये PhD करके आए हैं जी। उनकी गर्दन देखिए और उनके काम देखिए। यहाँ क्या पता चल रहा है कि हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने वाकई दीन दुनिया की हर दौलत दे दी, लेकिन आजिज़ी देखिए, यूज़ आउन, काबू में रख, अल्लाह मुझे काबू में रखना, कहीं मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊँ। तो इससे एक बात पता चलती है कि जब अल्लाह ताला दुनिया की कोई दौलत दे, कोई चीज़ दे। आज भी आप देखिए कि किसी को 2 बोलियाँ बोलनी आ जाए ना, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी 2-4, तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं बस ये हमारी प्रोफाइल है, हम इतनी लैंग्वेजेस जानते हैं, हम इतनी लैंग्वेजेस जानते हैं। लेकिन हज़रत सुलेमान ने ऐसा कोई तकब्बुर नहीं किया। असल ये चीज़ अल्लाह से, अल्लाह ताला को बंदे से मतलूब है। सच्चा इल्म बंदे को दौलत देता है। हदीस में आता है, जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों पे चला देता है। आप लोग यहाँ भी जो चल के आए हैं, बैठ के आए हैं गाड़ियों में, ये जन्नत के रास्तों की तरफ से गुजर के आए हैं इस हदीस की रोशनी में। तो हज़रत सुलेमान के अंदर जब्त था और उन्होंने लोगों को डिसिप्लिन रखा हुआ था। यहाँ ये भी बात पता चलती है कि इस्लाम को डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। एक मरतबा वो इनके साथ कूच कर रहे थे, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुंचे, तो एक चींटी ने कहा चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और इसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और इन्हें खबर भी ना हो। ज़रा नोट करिए, चींटियों को भी जान प्यारी है, हाथियों को तो होगी होगी। अल्लाह ने इंसान की तबीयत में रखा है, बल्कि हर इंसान क्या, हर जानदार को अपनी जान बड़ी प्यारी होती है। आप कभी छोटे से बच्चे को ऐसे उछाले ना ऊपर, तो आंखें बंद कर लेगा। तो ये खौफ का एक अंसर जो है ना, ये अल्लाह ने इंसानों में रखा है। और यहाँ चींटी की बात सुनकर सुलेमान का अलैहिस्सलाम का रिएक्शन देखिए, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े और बोले, रब्बी औज़ेनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनअमत अलैया वअला वालिदैय्या वअन अअमला सालिहन तरदाहू वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिकस सालिहीन। ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूँ। जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किया, और ऐसा अमल करूं जो तुझे पसंद आ जाए, और अपनी रहमत से मुझको अपने सालेह बंदों में दाखिल कर। आप में से कितने लोग नॉर्वेजियन कोर्स करते हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं? ये दुआ याद कर लें। जब कोई नई जुबान समझ आए तो रब का शुक्र करें, और एक नियत करें कई जुबान को तबलीग के लिए सीखने। हम तो इस मुल्क में पनपने और जीने के लिए सीखते हैं, या वीज़ा लेने के लिए या पासपोर्ट लेने के लिए सीखते हैं ना। लेकिन देखिए हज़रत सुलेमान क्या कह रहे हैं कि अल्लाह जो ज़ुबान भी मैं सीख रहा हूँ इसको मेरे लिए खैर का कर दे। तो आज इंग्लिश बोलने वालों की बहुत खूबी नहीं है, वो इस वक्त खूबी बनेगी जब ये इंग्लिश अल्लाह की तरफ लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। आज हमें उर्दू बोलनी आती ना आती, हमें इंग्लिश ज़रूर आती है। पंजाबी आए ना आए, उर्दू हमें अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, तो कोई बुरी बात नहीं। हर ज़ुबान अच्छी होती है, इंग्लिश बोलने वाले बुरे नहीं होते, याद रखिए। ये भी हमारी एक बड़ी अजीब नेगेटिव सोच है जो लोगों ने दी है। एक जगह किसी की बात सुनी थी, दीनदार की बात सुना रहे थे कि जन्नतियों की ज़ुबान अरबी होगी, हदीस है, ठीक है मान लिया, और साथ उनका कमेंट था कि मेरा ख्याल है कि जहन्नमियों की ज़ुबान इंग्लिश होगी। अब ये पाकिस्तान में बैठ के कोई जुमला तो पंजाब गांव का कोई बंद मौलवी दे सकता है, ये अमेरिका का कोई कोई मुबल्लिग नहीं दे सकता ये कमेंट। फिर तो सारी तबलीगी बंद कर दें आप, जो इंग्लिश ज़ुबान में हो रही है। कोई ज़ुबान बुरी नहीं, नॉर्वेजियन भी बड़ी खूबसूरत है, फ्रेंच भी खूबसूरत है, स्पेनिश भी खूबसूरत है। शर्त यह है कि आप इन ज़ुबानों को ब्रिजिस बनाएं और उन लोगों तक पहुँचें जो कि अभी तक कुरान तक नहीं पहुँचे। तो यह मुसलमानों का ज़िम्मा बनता है, और जो नॉर्वे में रहते हैं उनको तो इन चीज़ों पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक बंदे के सोचने का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है, एक माइंड सेट के साथ चलता है। और जब आप इस तरह से लेके चलते हैं तो वाकई इंसानियत की खिदमत करते हैं, वरना तो अपने अपने नामों की फिक्रें लगी रहती हैं, किसके नाम की बुक छपी और किसने क्या कर दिया। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि इल्म की दौलत जब दीन की दौलत से मिलती है तो फिर इंसान कितना नफामंद हो जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अवेयरनेस देखिए कि इतने बड़े बादशाह हैं कि इंसानों के साथ परिंदों और जानवरों को भी होल्ड करते हैं, लेकिन खुली आंख कितनी है कि एक एक बंदे पर उनकी नजर है। क्या कहते हैं, व तफक्कदत तईर फकाल माली अल्लार अल खुदूत। एक और मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है, मैं फलां खुदहुद को नहीं देख रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया है कि मैं इसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी पड़ेगी। क्या मतलब, अच्छा उस्ताद कौन है जिसकी नज़र हर स्टूडेंट पे है, कौन आया कौन नहीं आया, कौन बैठा किसने नहीं सुना, मुमकिन है आज के दौर में? आप देखिए कि जब रिसोर्सेज को सही यूज़ करें ना तो पता लग जाता है। अल्लाह करे हमारे सिस्टम इतने एक्यूरेट हों, कौन आया कौन नहीं आया इसको हम बाद में दिखा सकें। हर चीज़ को कैलकुलेट करना, रैकेट कीपिंग करना, ये इस्लाम का मिजाज है। आज हम मुसलमानों में जो क्योस पड़ा हुआ है ना, क्योस समझते हैं, हर वक्त अफरा तफरी है, पता ही कुछ नहीं कितने थे काफ़ी थे, वो कितने ज़रा गिन के आता हूँ कितनी बालिशते हैं। एक शख्स है तो वो उसको कहा जाता है वो किधर जाना, कहता है 10 खंभे गिन लो उसके बाद मुड़ जाना। नेविगेटर ने आपको इंचों मिनटों में सेकंड तक दिखा दिया आप इतने मिनट में पहुँच, कहाँ पहुँच रहे, बस 15 मिनट, आए घंटे बाद पहुँचे, मेरा ख्याल था लेकिन ठीक नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ आपको सिखा रही है सुलेमान अलैहिस्सलाम का किरदार क्या है, कि वो फिगर एंड फैक्ट्स को बड़ी अहमियत दे रहे थे। और आज ये नहीं होगा ना, दीन नहीं पनपेगा। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या छोड़िए, अपने बच्चों के स्कूलों को जाके देख लें, एक छुट्टी पे क्या होता है, मुझे यहाँ का नहीं पता, अभी अमेरिका का मुझे थोड़ा सा पता है अभी भी। पहली छुट्टी पे इट्स ओके, दूसरी पे नहीं, 3 छुट्टियाँ को बच्चा कर ले अपनी क्लास से, एक टार्डी, टार्डी एक उनकी कम है, टार्डीज मीन आप कह ले डांट, अब एक दफ़ा डांट देंगे फिर दोबारा हो गई तो फिर होते हुए, और अगर वो कुछ टार्डीज जमा हो जाएँ तो माँ बाप को बुला के ऑफिस में बिठाएंगे, जी इस बच्चे की छुट्टियाँ के इसको ले जाएंगे, अब इसको घर ही रखें। क्या आज मैं और आप दीन के नाम पे ये मिजाज रखते हैं? ये हमारे एक जनरल मिजाज की बात कर रही हूँ। ये पाबंदी अगर दीन वाले लगाएं तो खुश हों। अगर हम आपको कहें ना कि आपको ज़रूर आना पड़ेगा, वक्त पे आने पड़ेगा, आपकी सीट असाइंड है, आपकी कुर्सी खाली रहेगी, आपका इंतज़ार करेगी, तो आप खुश हों कि हम ऑर्गेनाइज हो गए। और अगर आप दीन के नाम पर, कि ये नहीं हमसे बर्दाश्त होता, आपको कहा जा रहा है साइन इन करें, जाते हुए साइन आउट करें, ये नहीं हमसे हो सकता, बच्चों को इधर रखें, बड़ों को इधर रखें, तो ये पाबंदियाँ नफ्स को कुचलती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है। जब हम मुसलमान ये सब अपने छोटे छोटे कामों में करेंगे ना तो दुनिया में भी करेंगे, वरना आप देख लीजिए या एयरपोर्टों पर लाइनों में लगे हैं, ग्रोसरीों में लाइनों में लगे हैं, आप सिर्फ एयरपोर्ट पर उतर के तो देखिए पाकिस्तान में, आपको लग पता जाएगा आज़ाद हो गए वहाँ, तो वो मेरा ले जाओ बाजी, ले लो बाजी ये मेरा पासपोर्ट पहले पकड़ो, मेरे पास बच्चे हैं, मेरा बाहर बाप आया है, मुझे ये करना है। और वहाँ आप देखते हैं जो पीछे शरीफी खड़े हैं, जो पीछे वाले आए वो खड़क करके लेके चल पड़े आगे। तो ये मिजाज दुरुस्त नहीं है। इसीलिए आज तक हम कुछ कर नहीं सके, इसीलिए आज तक दीन के बाद भी हमारे अंदर बेहतरी नहीं आती। आज हमारे अंदर हर निज़ाम ढीला, हर जगह हम ढीले पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें सुलेमान से ये बात सीखने वाला बना दे। फमाका सगैरा भाई, फिर कुछ ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने कहा मैंने वो मालूमात हासिल की जो आपके इल्म ही नहीं, मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरान है, इसको हर तरह का सरो सामान दिया गया और इसका तख्त बड़ा है, बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा वो और इसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरत को सजदा करती है। शैतान ने इनके अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए और इन्हें शाहराह से रोक दिया, इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते और इस अल्लाह को सजदा करें कि जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है। वो यालमु मा तुखफून व मा तुलिनून, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग जाहिर करते हो और छुपाते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। देखिए खुद खुद को अल्लाह की कितनी पहचान है। आज तो सजदा है, बाद में चाहें तो कर लीजिएगा। किस तरह उसको हैरत हुई कि पहली बात तो ये हैरत की है कि एक औरत हुक्मरान बन गई एक मुल्क की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क के हुक्मरान या जिस जगह का बड़ा औरत बन जाती है वो कौम कभी फला नहीं पाती। फिर आप देखिए कि इस परिंदे को कैसे अल्लाह की मार्फत है, हैरत हो रही है कि देखो सूरज को सजदा कर रही है, ये है वो है। आप और मैं अपने आप को ज़रा इस खुद खुद से टच करें। पीछे चुंटी की बात थी, आप चुंटी के बारे में अगर जानना चाहें तो हारून जाशा की कुछ बुक्स भी हैं, कुछ ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, आप देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत टीम वर्क है एक चुंटी के अंदर। खुद खुद को देखें तो इसको अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या वजह कि ये कायनात ये सब कुछ कर रही है, क्यों? डिसिप्लिन के साथ है। तो खुद खुद ने अपने ना आने की इतनी सॉलिड रीज़न दी कि हज़रत सुलेमान का गुस्सा दूर हो गया। कहा अच्छा ऐसी बात है, सनन जोरा सदक तम कुंता मिनल काज़िबीन। कहने लगे अच्छा अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठ बोलने वालों में से। मेरा ये ख़त ले जाओ और इसे इन लोगों की तरफ डाल दे जिसे अलग हट कर देख के वो क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। ये है असल में एक अच्छे लीडर की पहचान कि अच्छा जो कहा है ज़रा चेक करके आते हैं कि ये ठीक बात है भी कि नहीं। और फौरन पैगाम दे दिया मलका को तौहीद का। हम लोगों को कुफर शिरक में देखते हुए पिछले 10 साल गुजार चुके हैं, शायद ही हमने उन तक बात की हो, क्योंकि हम कहते हैं माइंड योर बिजनेस। तो ऐसी बात आपको मुझे इस चीज़ को देखना है। आप देखिए कि ये लोग इतना छोटी छोटी मखलूकात अल्लाह को पहचान रही हैं, तो मैं आप क्यों नहीं पहचान सकते। अल्लाह ताला के नबी ने ये बात सुनी, मलका की तरफ पैगाम भेजा, एक ख़त भेजा था। आप ज़रा सुनिए मलका का रिस्पॉन्स, पूरे वाक्य को इकट्ठा पढ़ के फिर इस पे ओवरऑल बात करें तो आई थिंक सो ज़्यादा बेटर होगा। कालत यायुहल मलाइनी उल्की इलैया किताबुन करीम। मलका बोली अहले दरबार मेरी तरफ एक बड़ा अहम ख़त फेंका गया है। कोई पर्सनल ख़त नहीं था कि वो दूसरों से छुपा लेती, वो एक जनरल एक डॉक्यूमेंटेशन था, सरकारी लेटर था। तो याद रखिए कि यहाँ से एक बात पता चलती है कि औरत मर्द इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट्स और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो सुलेमान की जानिब से है, ख़त देखिए कितना प्यारा है, इन्नहु मिन सुलेमान। और ये ख़त सुलेमान की जानिब से और अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू किया गया। सीधी सी बात, अल्लाह का नाम पहले बाद में अपना, ख़त लिखने का यही अंदाज़ है। अब तो लोग ख़त ही नहीं लिखते, ईमेल तो लिखते हैं ना, पूरी ईमेल पढ़ के नीचे लिखा होता है योर सिंसियरली, हैं नहीं, ऊपर लिखिए सबसे पहले आप अपना नाम लिखे, दिस लेटर इज़ फ्रॉम दिस दिस, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फलां फलां, फिर लिख के फिर एंड पे उनको बताइए काम क्या है। ये भी हज़रत सुलेमान से हम सीख रहे हैं। क्या कहा? अल्लाह तआलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। मजमून जो है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न दिखाओ और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। लग रहा है ना एक बादशाह का खत है, ये तबलीग हो रही है। देखिए जिसको आप तबलीग कर रहे हैं ना उसका स्टेटस देख के बात करें, जहाँ ये आपको अंदाज़ मिल रहा है। शाखी ख़त ऐसा ही होना चाहिए, सीधा सा कि आई एम इन्वाइटिंग यू टुवर्ड्स इस्लाम, कम एंड बी मुस्लिम, ये स्टाइल है। कालत अय्युहल, कालत अय्युहल मलऊ। ख़त सुनकर मलका ने कहा सरदाराने को मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। ये नोट कर लें कि मलका समझदार थी कि मशवरे की आदि थी, और मशवरा ना करने वाले खुद पसंद लोग होते हैं। मशवरा करना अच्छी बात है, किन से किया जाए? जो सिंसियर हों, जो लाइक माइंडेड हों, जो यकसू हों, जो किसी दूसरी चीज़ के साथ झुकाव ना रखते, उनका अपना नफ़ा नुकसान ना हो, और जो आपके उस कॉज के साथ सीरियस हों। तो कहने लगी कि बताओ मैं क्या करूं? जवाब सुनिए दरबारियों का। उन्होंने जवाब दिया हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है। यानी खुद अंदाज़ा दे दिया कि लड़ाई करो, लेकिन फिर कह रहे हैं वैसे आप जो चाहें करें। तो डिप्लोमेटिक किस्म के ब्यूरोक्रेट्स लग रहे हैं जो मलका के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ بھی کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ ملکہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان لالچی تو نہیں ہے، تحفوں میں تو نہیں پڑے ہوئے، یا کہ میرے ملک پہ تو نہیں قبضہ کرنا چاہتے۔ تو یاد رکھے کہ ہر تحفہ جو ہوتا ہے وہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہاں ملکہ نے یہی اسٹریٹجی استعمال کی۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، اللہ یہ بے نیازی دے دے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں اس کے تخت کے اندر لگے ہوئے ہیرے موتی جو ہیں وہ نہیں اتاروں گا۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں آپ کے پاس۔ جوں ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ دیکھیں سلیمان کا کردار، جہاں کو بڑی نعمت ملی فوراً رب یاد آ گیا۔ خود پسندانہ تعلیم اور اللہ تعالیٰ کو پسند کرنے والے بندے کی تعلیم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ ہر بات رب کی طرف لگاتا ہے، اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمت کیوں ملی، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، ہر نعمت امتحان کا پرچہ۔ کیوں ملی نعمت؟ تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات سے آپ بزرگ ہے۔ شکر والے کو شکر فائدہ کیسے دیتا ہے؟ آپ کو کسی نے کوئی چیز بھیجی، آپ کہتے ہیں بہت اچھی تھی، تھینک یو، اگلی دفعہ کیا کرے گا؟ پھر بھیج دے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز دے اور آپ کے ہم تو کھاتے ہی نہیں، ہم تو پہنتے ہی نہیں، ہم تو کسی کی لیتے ہی نہیں، اگلی دفعہ دے گا؟ یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ شکر گزار رہنے والوں کے ساتھ ایگزیکٹلی دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ تو خوش رہا کریں، روئے دوئے رہیں گے نا رونا دھونا بڑھ جائے گا، خوش خوش رہیں گے نا خوشی بڑھ جائے گی۔ تو نعمتوں کو اللہ کے نام سے جوڑ دیجیے، اور جس مقصد سے نعمت ملی ہے اس کو استعمال کر لیجیے۔ سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا کہ وہی ہے۔ تھی نا عورت، اپنی چیز کو عورت پہچان لیتی ہے، کہتی یہ میرا ڈبہ ہے، نہیں یہ نیلا ڈھکن کا وائٹ ہے۔ بھائی آئی کیا نہیں کہ ڈبہ تھوڑی بنایا ہے، ہر گھر میں وہی ڈبے ہیں۔ کچھ عورتیں کہتی نہیں یہ میرا ہے، نہیں یہ میرے ہی گھر کا ہے۔ تو عورت تھی، کہنے لگی یہ میرا ہی، حالانکہ حضرت سلیمان نے بدل دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بہت اسمارٹ عورت تھی، عقل مند تھی۔ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی کافر قوم میں سے۔ اس سے کہا گیا، محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ تھی سٹوری۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سٹوری میں کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ بعد میں پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی؟ ہم اردو کلچر والوں کو تسلی نہیں ہوتی جب تک اینڈ پہ شادی نہ کرائیں۔ چند دن پہلے میرے پاس کسی سسٹر کی بات آئی، باہر القصہ مختصر حضرت یوسف کے قصے کے بعد کی بات تھی، کہ کوئی دوسری سسٹر تھیں اور وہ کیا کہتی ہیں کہ جی زلیحہ علیہ السلام، میں نے کہا کیوں کہتی؟ وہ کہتے ہیں زلیحہ جی نے شہباد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور مطلب وہ نیک ہو گئی تھی اور ان کی حضرت یوسف سے شادی ہو گئی تھی، تو ان کو علیہ السلام کہیں گے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر کو بھی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے آپ میں، عمر کو نہیں کہہ سکتے، کیا کہیں گے ان کو؟ رضی اللہ عنہم۔ کہاں لکھا ہے ردو رضی اللہ عنہم و ردو عن؟ نبیوں کے ساتھ کہیں گے علیہ السلام، کیسے؟ سلام علی موسیٰ، سلام علی الیاس۔ تو بات کا خلاصہ دیکھیں کہ شادی ہو نہ ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر یہ واقعی کوئی کام کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیش کرتے کہ نہ کرتے؟ اور لوگوں نے اتنی لو سٹوریاں اس پہ بنا دی، اللہ کی بنا۔ بات جو دیکھنے کی وہ بڑی قابل غور ہے، جس پہ آپ غور کیجئے، اور واقعی وہ جم ہے اس بارے کا۔ فرعون کے پاس موسیٰ خود گئے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ ایک مرد بھی تھے، عموماً مردوں کی بات سالڈ ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن فرعون نہیں مانا۔ ملکہ سبا کے پاس خود خود گیا اور وہ ایک عورت تھی، ہدایت مل گئی۔ فرق کس بات کا ہے؟ औरत होकर हिदायत पा गई, फिरौन मर्द होकर हिदायत ना पा सका, तलब का फ़र्क था। फिरौन में बड़ाई थी, ये औरत बड़ी नहीं थी, अंदर से आजिज़ थी। पीछे आपने पढ़ लिया है कि उसको ये बड़ी चीज़ों ने आज तक रोका हुआ था, अंदर से बड़ी हम्बल थी। तो आपको क्या पता किस मुल्क का सदर और वज़ीर अंदर से कितना नरम हो। मैं आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, दुआ तो कर सकते हैं। तो याद रखिए, जो जिस लेवल पे ना वहाँ तबलीग करे। मुतासर हुई सुलेमान की इन सारी चीज़ों से, उसको इस्लाम दिखा, उसने बात को मान लिया। अल्लाह ताला से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि हम सब भी जब किसी बात को सुने मान जाए तो उसके बाद चल पड़े। और यहाँ ये भी पता चलता है कि मलका पर्सनली बहुत अक्लमंद थी, लेकिन उस तक इल्म नहीं पहुँचा था। आज भी ऐसे लाखों लोग दुनिया में फिर रहे होंगे, करोड़ों फिर रहे होंगे, हैं बहुत स्मार्ट, अभी तक हिदायत का चिराग नहीं जला, अभी तक उन तक हमने इल्म नहीं पहुँचाया। तो काम करने की ज़रूरत है, काम करें। मैं और आप, वो कहते हैं ना कि वक्त फुर्सत कहाँ है, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। तो जब तक पूरी दुनिया में लोगों तक इस्लाम ना पहुँचे, मैं आप नहीं सो सकते, अभी तो बहुत कुछ करना है। और यही चीज़ ये सिखाती है चीज़ हमें। फिर आप देखिए कि जो च्युंटी की बात हमने पढ़ी, तो च्युंटी में टीम वर्क बहुत होता है, ये अकेले काम नहीं करती। इवन आप कहीं एक चीनी का ज़रा डालकर देखें, एक च्युंटी आएगी पहले, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फौज लग जाती है। कहाँ से आती है वो च्युंटी? पहले चीनी देख के जाती है, फिर उनको इशारा करती है, अपने परों से बजा के बताती है, कम हो इधर आ जाओ। एक च्युंटी 3 से 4 जुबानें जानती है जी। आपको मुझे कितनी आती हैं? इतनी ही आती होंगी, रोती धोती हैं। जंगजू होती है, हमले करती है, बाकायदा जंगे करती है। एक इनकी क्वीन च्युंटी होती है जो सबको लीड करती है, बाकी वर्कर च्युंटियाँ होती हैं, और बास च्युंटियाँ गुलामी वाली होती हैं। और मेल च्युंटा क्या करता है? मेटिंग के बाद मर जाता है, उसका इतना ही काम है। यानी फर्टिलिटी देख लीजिए, फिजिबिलिटी देख लीजिए, कायनात में काम करने को देखिए, कायनात में फ़ीमेल ज़्यादा प्रोडक्टिव है। औरत को माँ बना दिया, यही बड़ी बात है। बाप तो मान ही बने ना। तो हम औरतों को इसमें अपने लिए इबरत लेने की ज़रूरत है कि क्या हम मर्दों से ज़्यादा काम कर रहे हैं? करना चाहिए, इस पर कभी कॉम्प्लेक्स ना फील किया करें कि मर्दों से ज़्यादा क्यों करें, करना है। हाँ, इताअत उनकी है, अच्छी बात है, लेकिन काम औरतें ही ज़्यादा कर देंगी। फिर इसके बाद आखिरी बात इसमें एक और बहुत प्यारी है, और वो क्या है? खुद खुद को किसने बताया था कि ये खुदा को पूजना और सूरत को पूजना? फितरत ने। हर कायनात की मखलूक मुस्लिम है, यही कहा जाता है कि लहू असलम मन फिस समावाती वल अर्द। अब आगे कौम समूद का किस्सा है। वलकद अरसलना इला समूद आखा खुन सालेहा, और समूद की तरफ हमने इनके भाई साले को ये पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी कबूल करो। तो यकायक वो दो झगड़ने वाले गिरोहों में बदल गए। यही होता है आज भी, जिस सोसाइटी में तौहीद आएगी ना, वहाँ सोसाइटी दो हिस्सों में आ जाएगी। एक कौन सा? अल्लाह की तरफ चलने वाले, और एक शैतान की तरफ। सवाले ने कहा, मेरी कौम के लोगों, प्यार देखिए अपनी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से मगफरत तलब करते, शायद के तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने कहा कि हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है। साले ने जवाब दिया, तुम्हारे नेक और बदशगुन का सरिश्ता तो अल्लाह के पास है, असल बात यह कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। वका नफिल मदीना तिसतुरहतिन, यहाँ थोड़ा सा नोट कीजिए कि ये सूरत तब नाजिल हो रही है जब मक्का में नबी सल्लम के कत्ल की कोशिशें शुरू हो रही हैं। बिल्कुल हिजरत के लिए वो रास्ते बनते जा रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि अब इनको हम रास्ते से हटा दें। तो अल्लाह हज़रत सवाले अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिशें खोल के बयान कर रहे हैं। किस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते थे और कोई इसलाह का काम न करते थे? उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद करो कि हम साले और इसके घर वालों पर शब खून मारेंगे, यानी रात को हमला करेंगे, और फिर इसके वली से कह देंगे कि हम इसके ख़ानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद ना थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं, ये चाल तो वो चले, फिर एक चाल हमने चली, और वो इसका शऊर तक ना रखते थे। अब देख लो कि इनकी चाल का इंजाम क्या हुआ, हमने तबाह करके रख दिया इनको और इनकी पूरी कौम को, वो इनके घर खाली पड़े हैं इस जुल्म की पादाश में जो वो करते थे। इसमें एक निशान इबरत है, लिकौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। वन जैन अल्लसीना आमनु वकानू यत्तकून, और बचा लिया हमने इन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज़ करते थे। क्या पता चला आपको मुझे इसमें कि जब जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? उन्होंने हजरत सालेह के कत्ल की कोशिश की, अल्लाह ने उन पर 3 रातों में अजाब नाजिल करके पूरी कौम की तबाह बर्बाद कर दिया। तो याद रखिए कि अगर ईमान वाले सच्चे हों तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, आज भी करेगा, कल भी की थी, शर्त यह कि वो ईमान पैदा हो जाए। फिर इसके बाद कौम लूत, व लूत अनिसकाल अली कौमी ही अतातून अल्फाहिशा तब अंतुम तुबसिरून, और लूत को हमने भेजा, याद करो वो वक्त जबकि इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम लोग क्या तुम आंखों देखते बदकारी करते हो? क्या तुम्हारी यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए आते हो? हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत का काम करते हो, मगर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ और न था। एक ही जवाब है उनके पास कि निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया इसको और उसके घर वालों को, बजुज उसकी बीवी के, जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था। और बरसाई इन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी वो इन लोगों के हक में, जिनको वॉन किया गया, जिनको आगाह किया गया, मुतनब्बिह किया गया। सारे किस्सों को सुनकर क्या कहो, कुल अल्हम्दुलिल्लाहि वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा। ए नबी कहो, हम्द है अल्लाह के लिए और सलाम है उसको उन बंदों पर जिन्हें इसने चुन लिया। यानी इतनी तबाहशुदा कौमों के किस्से सुन सुनकर एक इंसान, ऐसे लोगों के किस्से सुनते हुए एक इंसान परेशान होने लगता है, तो कहा कि अल्लाह की तारीफ करो। किस क्यों? क्योंकि उसने ईमान वालों को बचा लिया और बुरे काम करने वालों को डुबो दिया। इनसे पूछो, अल्लाह बेहतर है या वो महबूद जिन्हें ये लोग अल्लाह का शरीक बना रहे हैं? है कौन? जवाब दे दीजिए। तो इसका जवाब 20वें पारे की पहली आयत कंटिन्यू होता है, पारा नंबर 12, आयत नंबर 60, सूरत नमल।